एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीव हैगन की बुद्धिज्म प्लेन एंड सिंपल। हिंदी में समझे तो बुद्ध धर्म सीधी और सरल समझ।
नमस्कार। और ये किताब हाँ वाकई बहुत सीधी और सरल है।
बिल्कुल, ये बुद्ध की शिक्षाओं को ना बिना किसी भारी भरकम फलसफे के एकदम सीधे अनुभव के लेवल पर लाती है।
हाँ, और इसीलिए ये आज के समय में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको?
देखिए, आजकल की जो भागदौड़ है उसमें हम सब कहीं ना कहीं एक बेचैनी महसूस करते हैं, है ना?
हाँ वो तो है।
ये किताब उन्हीं सवालों को छूती है। ये असंतोष क्यों है, क्या शांति मिल सकती है, और जवाब भी ऐसे देती है जो मतलब कर्मकांड या किसी खास विश्वास पर आधारित नहीं।
अच्छा, तो फिर किस पर आधारित है?
ये कहती है खुद देखो, अपने अनुभव से जानो, ये मानने की नहीं बल्कि करके देखने की बात है।
ये तो बढ़िया है, मतलब उन लोगों के लिए खास तौर पर जो शायद पारंपरिक धर्मों की बातों से थोड़ा हिचकते हैं।
बिल्कुल, उनके लिए तो ये जैसे ताजी हवा का झोंका है, जो जीवन को समझना चाहते हैं पर शायद वो जटिल भाषा या ढांचे में नहीं उलझना चाहते।
तो एक तरह से ये आध्यात्मिकता को सबके लिए आसान बना रही है।
हाँ, हेगन का जोर इसी बात पर है कि बुद्ध की जो मूल बातें हैं वो किसी एक संस्कृति या मजहब की नहीं है। वो तो बस यथार्थ को, मतलब जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखने की कला है, बिना हमारे अपने फिल्टर लगाए।
बिना फिल्टर किए।
जैसे हमारे विचार, हमारी इच्छाएं,
हाँ बिल्कुल,
हमारे डर, हमारी पसंद नापसंद, इन सब के पार जाकर देखना, जैसे अपने ही मन की लैब में एक्सपेरिमेंट करना।
दिलचस्प। तो ये स्टीव हेगन हैं कौन जिन्होंने इतनी सीधी बात कही है?
स्टीव हेगन की कहानी भी काफी रोचक है। वो एक जैन बुद्ध पुजारी हैं, शिक्षक हैं।
अच्छा, जैन बौद्ध।
हाँ, लेकिन वो पश्चिम से आते हैं और उन्होंने जापान के एक बहुत माने हुए जैन गुरु थे डैनिन कतागिरी रोशी, उनके साथ 15 साल से ज्यादा मतलब साधना की है।
ओह, 15 साल!
हाँ, लंबा समय। और आज वो मिनियापोलिस में एक जैन सेंटर है, धर्मफील्ड जैन सेंटर, वहाँ मुख्य शिक्षक हैं।
तो मतलब उनमें पूर्व और पश्चिम दोनों का अनुभव है।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो पश्चिम की सोच, मतलब तर्क, प्रैक्टिकल होना, उसे समझते हैं। और साथ ही उन्हें जैन की वो गहरी अनुभवात्मक समझ भी है, इसीलिए वो बौद्ध धर्म के जो गूढ़ सिद्धांत है ना।
हाँ, जो कई बार मुश्किल लगते हैं।
बिल्कुल, उन्हें वो आज की सीधी सादी भाषा में बिना किसी लाग लपेट या रहस्यवाद के समझा पाते हैं।
मतलब वो इसे मानने की चीज नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे जीने का एक तरीका, अनुभव करने का एक रास्ता बताते हैं।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, उनके अपने अनुभव से आ रहा है।
सही कहा, उनका जोर ही करके देखो पर है, सिर्फ मान लो पर नहीं। और यही उनकी कह सकते हैं खूबी है, मुश्किल को आसान बनाना पर उसकी गहराई बनाए रखना।
तो फिर ये किताब बुद्धिज्म प्लेन एंड सिंपल हमें किस दिशा में ले जाती है? क्या है इसका मूल सार?
अगर एक लाइन में कहूँ तो ये किताब बौद्ध धर्म के जो बाहरी आवरण है ना, उन्हें हटाकर सीधे उसके दिल तक ले जाती है।
और वो दिल क्या है?
बस इतना, यथार्थ के प्रति जागना, वेक अप टू रियलिटी। बस हेगन साफ कहते हैं, ये कोई धर्म या फिलॉसफी नहीं जिसे मानना पड़े।
तो फिर क्या है?
ये अपने ही अनुभव की सीधी पल पल की जांच है, जागरूकता बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल तरीका।
अच्छा, अपने अनुभव की जांच, और इस जांच से पता क्या चला, मतलब हमारी असली समस्या क्या है हेगन के हिसाब से?
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारी जो ज्यादातर बेचैनी है, दुख है, जिसे बौद्ध भाषा में दुख कहते हैं,
दुख,
हाँ, वो बाहरी चीजों से उतनी नहीं आती जितनी हमारे अपने मन के बनाए जालों से आती है।
मन के बनाए जाल?
मतलब हम दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने विचारों, अपनी धारणाओं, अपने लेबल्स के चश्मे से देखते हैं। मैं, मेरा, ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा होना चाहिए।
हाँ ये तो होता है।
और हम इन चश्मों को, इन विचारों को ही असलियत समझ लेते हैं। बस यही सारा कंफ्यूजन है, सारा भ्रम है।
अरे मतलब समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे देखने के तरीके में है।
बिल्कुल, यही तो किताब की सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम तो अक्सर बाहर ही दोष देते रहते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, मौसम खराब है, लोग ठीक नहीं, किस्मत खराब है।
सही कहा, किताब इसी पर उंगली रखती है। वो हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी गहरी मान्यताओं पर सवाल करें, जैसे क्या मैं सच में एक ठोस चीज हूं, क्या खुशी बाहर से मिलेगी। हैगन का जोर इस पर है कि हम लगातार यथार्थ के बारे में सोचे नहीं, बल्कि उसे सीधे देखना, सीधे महसूस करना सीखें।
तो किताब का सफर एक तरह से भ्रम से स्पष्टता की ओर है।
हाँ हाँ बिल्कुल। और इसमें कुछ पड़ाव है।
क्या है वो पड़ाव?
पहले वो समस्या दिखाते हैं कि कैसे हम विचारों में जीते हैं, फिर बुद्ध का निदान, चार आर्य सत्य पर एक नए नजरिए से, फिर समाधान, अष्टांगिक मार्ग, जीने की कला की तरह,
अच्छा,
और फिर अंत में यथार्थ की असलियत पर से पर्दा उठाते हैं कि सब बदल रहा है, कोई पक्का मैं नहीं है और सब कुछ जुड़ा हुआ है।
अनित्यता, अनात्मा, अंतर संबंध, यही ना?
हाँ वही। पर ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अनुभव करने की चीजें हैं।
चलिए इन पड़ावों को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत समस्या से, हमारी धारणाएं, हमारे विचार। हेगन कहते हैं हम यथार्थ नहीं अपने विचार देखते हैं। ये सुनने में तो सिंपल है, पर रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब बहुत गहरा है। सोचिए आप सुबह उठे, बाहर बारिश हो रही है। अब एक तो है सीधा अनुभव, पानी गिर रहा है, आवाज आ रही है, हवा ठंडी है।
ठीक।
दूसरा है आपका विचार, ओ नो बारिश, अब कैसे जाऊंगा, पूरा दिन बेकार।
हाँ, अक्सर यही होता है।
विचारों की कहानी में हम बारिश को नहीं, बारिश पर अपनी प्रतिक्रिया को अनुभव कर रहे होते हैं।
और ये विचार, ये लेबल, जैसे बारिश बुरी, ये बनते कैसे हैं? ये जरूरी नहीं है क्या दुनिया समझने के लिए?
हाँ, मन को समझने के लिए चीजों को नाम देना पड़ता है। कुर्सी, पेड़, खुशी, गम, ये जरूरी भी है।
तो फिर दिक्कत कहाँ है?
दिक्कत तब होती है जब हम इन नामों को, इन लेबल्स को ही असली चीज मान लेते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि गुलाब शब्द असली फूल नहीं है। फूल का अनुभव तो अलग है, उसकी खुशबू, उसका एहसास।
अच्छा,
विचारों से ये जो चिपकाव है ना, यही दुख लाता है।
तो इस जाल से निकलें कैसे? यहाँ शायद वो चार आर्य सत्य आते हैं।
हाँ बिल्कुल। और हेगन उन्हें धार्मिक उपदेश की तरह नहीं देखते, वो कहते हैं ये डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है।
डायग्नोसिस
कैसे? पहला सत्य, जीवन में दुख है। ये सिर्फ बड़ा दुख नहीं, एक हल्की सी बेचैनी, असंतोष जो हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं चीजें टिकें, पर सब बदल रहा है।
ये तो है।
दूसरा सत्य, इसका कारण है तृष्णा। ये सिर्फ चीजों की चाहत नहीं, बल्कि एक गहरी प्यास है कि दुनिया वैसी हो जैसी हम चाहते हैं, न कि जैसी वो है। ये अपने विचारों को सच मानने की जिद है, खासकर मैं के विचार को।
ये तो वाकई एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैसा लग रहा है। तो फिर तीसरा और चौथा सत्य, हल क्या है?
तीसरा सत्य, उम्मीद है दुख खत्म हो सकता है। अगर कारण विचारों से चिपकना है, तो इस पकड़ को ढीला करने से आराम मिल सकता है। ये भागना नहीं, बल्कि साफ दिखना है।
और चौथा?
चौथा सत्य है रास्ता, अष्टांगिक मार्ग। ये नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि जागरूकता से जीने के 8 जुड़े हुए पहलू हैं, ध्यान देने की कला।
अष्टांगिक मार्ग, ये नाम तो बहुत सुना है, पर हेगन इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये 8 अलग अलग सीढ़ियां हैं?
नहीं, हेगन जोर देते हैं कि ये सीढ़ियां नहीं, एक ही हीरे के 8 पहलू हैं, सब साथ काम करते हैं।
अच्छा।
मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं, प्रज्ञा यानी सही समझ, शील यानी सही आचरण, और समाधि यानी मन को साधना।
प्रज्ञा, शील, समाधि, ठीक है।
प्रज्ञा है चीजों को ठीक वैसे देखना जैसी वो है, बदलना, अनित्य, कोई पक्का मैं नहीं, अनात्मा। शील है सही बर्ताव, सही बोलना, सही काम करना। ये नैतिक बोझ नहीं, बल्कि इस समझ का नतीजा है कि सब जुड़े हैं, तो किसी को दुख देना खुद को दुख देना है।
और समाधि?
ये ध्यान वाला हिस्सा है।
हाँ,
समाधि है मन को साधना। इसमें सही कोशिश आती है मन भटके तो प्यार से वापस लाना। सही जागरूकता आती है सती या माइंडफुलनेस, मतलब अभी इसी पल क्या हो रहा है उसे बिना जज किए जानना, ये सबसे जरूरी है।
सती, माइंडफुलनेस, हाँ।
और सही एकाग्रता अभ्यास से मन का टिकना, ये सब मिलकर हमें विचारों के शोर से निकालकर सीधे अनुभव में ले आते हैं।
जब हम इस तरह ध्यान देने शुरू करते हैं, मतलब सती का अभ्यास करते हैं, तो यथार्थ कैसा नजर आता है? आपने वो 3 शब्द कहे थे, अनित्यता, अनात्म, अंतर संबंध, सुनने में भारी लगते हैं।
हाँ लगते हैं, पर हेगन इन्हें भी बहुत सरल बनाते हैं। अनित्यता मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है हर पल, पहाड़ भी, हमारे विचार भी,
सब कुछ
सब कुछ। यथार्थ एक नदी जैसा है, कोई जमी हुई झील नहीं, और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं।
और अनात्मा, ये कि कोई मैं नहीं हूं, ये तो और भी कंफ्यूजिंग है।
हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हैं ही नहीं।
तो फिर
मतलब ये है कि जिसे हम मैं कहते हैं ना, ये शरीर, ये सोच, ये फीलिंग्स, ये कोई एक ठोस परमानेंट चीज नहीं है जो अंदर बैठी सब कंट्रोल कर रहे हो।
अच्छा,
ये तो बस एक लगातार बदलती हुई प्रक्रिया है, एक धारा है, कोई बॉस नहीं बैठा अंदर। और हेगन कहते हैं इसे समझना डरावना नहीं बल्कि आजादी देने वाला है।
आजादी
हाँ,
कैसे?
क्योंकि फिर उस काल्पनिक मैं को बचाने, उसकी तारीफ करवाने, उसकी चिंता करने का जो भारी बोझ है ना, वो उतर जाता है। सोचिए कितनी एनर्जी बच जाएगी।
वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरह से सोचना हुआ। और अगर कोई अलग मैं नहीं है, तो फिर वो तीसरा शब्द अंतर संबंध, उसका क्या मतलब हुआ?
उसका मतलब सीधा है, अगर कोई चीज अलग है ही नहीं तो सब कुछ जुड़ा हुआ है।
जैसे?
जैसे ये फूल बिना हवा, पानी, मिट्टी के नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी अपने आसपास की दुनिया के बिना नहीं हो सकता। मैं और दूसरा के बीच की जो दीवार है ना, वो असल में है ही नहीं, वो बस एक विचार है। और जब ये दिखने लगता है तो हमदर्दी, करुणा, वो अपने आप आती है, उसे लाना नहीं पड़ता।
ये सब समझना तो ठीक है, पर इसे असल में अनुभव कैसे करें? रोज की जिंदगी में अभ्यास क्या है?
अभ्यास बिल्कुल सीधा है, हेगन उसे कहते हैं केवल देखना या साक्षी भाव, बेयर अटेंशन।
केवल देखना मतलब
इमोशन, उसे बस देखो, बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए, बिना कहानी बनाए,
बस देखना है, कुछ करना नहीं।
हाँ, जैसे कोई साइंटिस्ट देख रहा हो, बर्तन धो रहे हैं तो बस पानी, साबुन, प्लेट के एहसास पर ध्यान दें। गुस्सा आ रहा है तो देखें कि शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, बिना मुझे गुस्सा क्यों आया कि कहानी में खोए। निर्देश हर पल के लिए एक ही है, बस देखो, बस सुनो, बस महसूस करो।
और यही अभ्यास क्या वो एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय तक ले जाता है? हेगन उसे कैसे देखते हैं?
हेगन ज्ञानोदय को भी बहुत जमीन पर ले आते हैं। वो कहते हैं ये कोई भविष्य में मिलने वाली जादुई चीज नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये बस अभी इसी पल जो सच है, ये बदलाव, ये जुड़ाव, ये मैं का न होना, उसके प्रति पूरी तरह जाग जाना है। कुछ नया पाना नहीं, बल्कि जो हमेशा से था उसे साफ साफ देख लेना है। ये लगातार कुछ और चाहिए वाली खोज का अंत है।
कमाल है। तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं?
पहला और सबसे जरूरी मेरे ख्याल से, आपका अपना सीधा अनुभव ही असली गाइड है। किताबें या गुरु मदद कर सकते हैं, पर आखिर में देखना आपको खुद है। हेगन बार बार कहते हैं खुद देखो, यकीन मत करो, जांच करो, ये आपको शक्ति देता है।
हाँ, ये बहुत पावरफुल है। और दूसरा?
दूसरा, हम अक्सर अपने विचारों के जाल में फंसे रहते हैं और यही दुख की जड़ है। हम दुनिया को नहीं, दुनिया पर अपने विचारों के लेबल को जीते हैं। ये समझना कि हमारे विचार कैसे हमारी नजर को धुंधला करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी राहत है।
जैसे ये जानना कि हम जो फिल्म देख रहे हैं
वो स्क्रीन पर नहीं, प्रोजेक्टर से आ रही है।
बिल्कुल।
तीसरा, सब कुछ बदल रहा है, ये नियम है, इससे लड़ने की बजाय इसे स्वीकार करना सीखना होगा। स्थिरता का मोह छोड़ने में ही शांति है।
चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल लगता है, एक अलग पक्का मैं सिर्फ एक विचार है, भ्रम है। हम एक चीज नहीं, एक प्रक्रिया है। इसे महसूस करना डर नहीं, आजादी लाता है, उस मैं की पहरेदारी से मुक्ति जिसकी हम इतनी चिंता करते हैं।
और पांचवा, जागरूकता यानी सचेतनता, यही रास्ता है और यही मंजिल भी। अभ्यास किसी भविष्य के फल के लिए नहीं है, अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद होना, यही सब कुछ है। और ये मुश्किल नहीं, बस ध्यान देने की बात है, हर पल, हर सांस में।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो इन विचारों को और साफ करती हैं, कुछ ऐसी खास बातें।
हाँ, हेगन की भाषा बहुत सीधी है। जैसे वो कहते हैं भावार्थ में, हम यथार्थ नहीं देखते, हम यथार्थ के बारे में अपने विचार देखते हैं। जागरूकता का अभ्यास इसी फर्क को देखना है कि विचारों का रंग चढ़ने से पहले असल में वहां क्या था। यह हमारे मेंटल फिल्टर पर रोशनी डालता है।
एक और जो मुझे याद रह गया, ज्ञानोदय कोई दूर की रहस्यमय अवस्था नहीं, ये बस अभी जो है उसके प्रति जागना है। ये किसी और चीज की तलाश का अंत है, ये पहुंचने की जो बेचैनी होती है ना।
हाँ, उसे शांत करता है। और वो अनात्म वाली बात को वो ऐसे कहते हैं, आप कोई संज्ञा नहीं है, आप एक क्रिया है। जिसे आप मैं कहते हैं वो कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लगातार बदलती प्रक्रिया है, देखने, सुनने, सोचने, महसूस करने की एक धारा।
क्रिया संज्ञा नहीं, ये अच्छी उपमा है।
हाँ, और अभ्यास के लिए उनका निर्देश कितना साफ है। निर्देश बस इतना है, ध्यान दें कि आप क्या देख रहे हैं। इसे बदलने, ठीक करने या समझने की कोशिश ना करें, बस इसे वैसे ही देखें जैसा ये है।
कितना सिंपल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली जिंदगी में रोज की भागदौड़, तनाव, झगड़े, वहां ये सब कैसे काम आएगा?
बिल्कुल सही सवाल है, वहीं तो असली टेस्ट है। जैसे तनाव या चिंता हो रही है,
हाँ,
तो जब वो चिंता वाले विचार आए, उन्हें सच मानकर उनमें बहने की बजाय उन्हें बस विचार की तरह देखना। ओ, ये चिंता का विचार है, इससे थोड़ी दूरी बनती है। या ट्रैफिक में गुस्सा आए तो उस गुस्से की फीलिंग को शरीर में महसूस करना, बिना कहानी बनाए कि इसने गलत किया।
और रिश्तों में, वहां तो मैं और तुम बहुत मजबूत होते हैं।
हाँ, पर वहां भी ये काम आ सकता है। जब लगे मैं सही तुम गलत, तो याद करना कि ये मैं और तुम भी बदलते हुए विचार हैं। शायद इससे बचाव या आरोप कम हो जाएं। दूसरे को सुनते हुए अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। क्या मैं सच में सुन रही हूँ या बस अपने जवाब की सोच रही हूँ?
ये मुश्किल है, पर हाँ, इससे फर्क पड़ सकता है। और काम पर फोकस बढ़ाने में
माइंडफुलनेस का अभ्यास, वो क्षति, वो ध्यान का ही तो अभ्यास है। जब काम करते हुए मन भटके, तो खुद को कोसने की बजाय बस नोट करना कि मन भटका, और धीरे से उसे वापस ले आना। बार बार करने से एकाग्रता अपने आप बढ़ती है।
और जो मुश्किल भावनाएं आती हैं, दुख, डर, जलन, उनका क्या?
उनसे लड़ना नहीं, उन्हें दबाना नहीं, बस उन्हें भी जागरूकता से देखना, महसूस करना कि वो शरीर में कहाँ है, उन्हें जगह देना। अक्सर वो आती हैं, और अगर हम उनसे चिपके नहीं तो चली भी जाती हैं। इससे हम इमोशनली ज्यादा रिजिलियंट बनते हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सबसे बड़ा सबक क्या है? आपके लिए सबसे खास बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि जागृति कोई बहुत दूर की खास लोगों की चीज नहीं है, वो यही है, अभी है, हमारे सबसे साधारण अनुभव में। ये कुछ जोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि परतों को हटाने के बारे में है। और वो अनात्म का विचार कि कोई पक्का मैं नहीं है, ये शुरू में डरा सकता है, पर इसमें गहरी शांति है।
और मेरे लिए इसका सीधापन, इसकी व्यावहारिकता, ये किसी विश्वास पर नहीं अपने अनुभव पर जोर देता है। खुद देखो, ये बात मुझे बहुत अपील करती है। रास्ता शायद आसान ना हो, पर ये सबके लिए खुला है, यहीं अभी, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हों या दाल बना रहे हों। बिल्कुल,
ये आध्यात्मिकता को जिंदगी का हिस्सा बनाता है, अलग नहीं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
अगर ये मैं, ये स्वयं का भाव जिसे हम इतनी मजबूती से पकड़ते हैं, जिसकी इतनी चिंता करते हैं, अगर वो सच में एक ठोस चीज ना होकर बस एक विचार है, एक प्रक्रिया है, तो फिर हम असल में दिन भर किसकी रक्षा कर रहे हैं? इस पर सोचने से हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी चिंताओं में क्या बदलाव आ सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।